कल्पना कीजिए कि किसी बहुत पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी के एक अंधेरे कोने में एक प्राचीन दस्तावेज मिलता है। जैसे ही पन्ने पलटे जाते हैं, ओ कहानी में अचानक एक उग्र भीड़ का हंगामा शुरू हो जाता है।
हाँ बिल्कुल, एक फिल्मी सीन की तरह।
एकदम फिल्मी, मतलब खौफनाक समुद्री यात्राएं हो रही है, तूफान आ रहे हैं, जेल से रातों रात भागने की घटनाएं और बड़े बड़े मंचों पर दिए गए जबरदस्त भाषण। ये सब इतना सिनेमैटिक है कि कोई भी पहली बार में यही सोचेगा कि अरे वाह, ये तो कोई बहुत ही बेहतरीन थ्रिलर या ऐतिहासिक नॉवल है।
सही बात है, और ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक भी
है ना। लेकिन क्या हो अगर वो दस्तावेज कोई फिक्शन या नॉवल न होकर एक वास्तविक इतिहास हो। हमारी आज की इस डीप डाइव में हम डॉक्टर क्रेग कीनर के लेक्चर और उनकी रिसर्च को सामने रखकर ठीक इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा फोकस है बुक ऑफ एक्ट्स। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन दुनिया में इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता था, और ये जो एक्ट्स की किताब है इसका असली जॉनरा या कहें साहित्यिक शैली आखिर है क्या।
और ये समझना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जब भी हम पुरानी सदी की किसी टेक्स्ट को उठाते हैं तो हम अक्सर जाने अनजाने में आज के मॉडर्न चश्मे से उसे जज करने लगते हैं।
हाँ, मतलब हमें लगता है कि इतिहास है तो बोरिंग ही होगा।
बिल्कुल, अगर आज के जमाने में कोई हिस्ट्री की किताब लिखता है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ही ड्राई होगी और सिर्फ फैक्ट से भरी होगी, और अगर किसी किताब में थोड़ा भी एक्शन या ड्रामा दिख जाए तो हम मान लेते हैं कि ये पक्का कोई फ्रिक्शन होगा। डॉक्टर कीनर की रिसर्च इसी बात पर जोर देती है कि किसी भी टेक्स्ट का सही मतलब तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम ये न जान लें कि उसके लेखक का मूल उद्देश्य क्या था।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहीं से हमारी चर्चा का पहला और शायद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। जो मॉडर्न रीडर्स हैं उनके दिमाग में एक सेट पैटर्न है कि एक्शन का मतलब फिक्शन, और इसी लॉजिक का इस्तेमाल रिचर्ड पर्वो नाम के एक जाने माने स्कॉलर ने किया था, है ना।
हाँ, रिचर्ड पर्वो, उनका एक बहुत ही बोल्ड क्लेम था कि एक्ट्स की किताब दरअसल एक उपन्यास है।
उपन्यास मतलब कोई नॉवल।
हाँ, या उनके शब्दों में कहें तो एक उपन्यासिक इतिहास। पर्वों का कहना था कि इसमें जो चीजें हैं, जैसे कि विरोधियों का जमकर मजाक उड़ाना, हर दूसरे शहर में एक उग्र भीड़ का इकट्ठा हो जाना और नायकों का सुपर हीरो की तरह एडवेंचर करना, ये सब एक नॉवल की निशानियां हैं।
मुझे लगता है कि ये लॉजिक थोड़ा फ्लॉड है। मतलब क्या एक्शन होने से कोई चीज सीधे नॉवल बन जाती है?
यहां सबसे आकर्षक बात यह है कि ये लॉजिक पूरी तरह से फ्लॉड है। रिचर्ड पर्वो का ये तर्क पहली बार सुनने में बहुत सॉलिड लगता है। मॉडर्न माइंडसेट से सोचें तो हाँ, ये सारी चीजें एक नॉवल में ही मिलती हैं, लेकिन जब हम प्राचीन साहित्य के परिदृश्य में जाते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है।
अच्छा, कैसे बदल जाती है?
पर्वो ने जिन चीजों को उपन्यास का सबूत माना वे दरअसल प्राचीन इतिहास लेखन की बहुत ही आम और स्टैंडर्ड विशेषताएं थी।
रुको रुको रुको, मतलब आप कह रहे हैं कि प्राचीन इतिहासकार जानबूझकर अपने विरोधियों का मजाक उड़ाते थे? क्या इससे उनका जो सीरियस हिस्टोरियन वाला टैग है वो खराब नहीं होता था?
आज के जमाने में शायद हो जाए, लेकिन उस समय बिल्कुल नहीं। रोमन इतिहासकार टैसिटस का ही उदाहरण लेते हैं।
टैसिटस, वो तो बहुत बड़ा नाम है ना।
बिल्कुल, टैसिटस को प्राचीन दुनिया के सबसे बेहतरीन और सीरियस इतिहासकारों में गिना जाता है, लेकिन जरा उनके काम को पढ़िए। उन्होंने सम्राट नीरो और डोमिशियन के बारे में जो लिखा है वो किसी न्यूट्रल रिपोर्टिंग जैसा नहीं है।
मतलब उन्होंने भी मजाक उड़ाया था?
जमकर मजाक उड़ाया था। उन्होंने उन सम्राटों के खिलाफ बाजार में उड़ने वाली हर गॉसिप, हर भयानक अफवाह को अपने इतिहास का हिस्सा बनाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन इतिहासकार मानते थे कि इतिहास का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि समाज को ये भी बताना है कि क्या सही है और क्या गलत।
अरे वाह, तो मतलब बुरे शासकों को एक्सपोज करना उनका काम था।
एकदम सही, बुरे शासकों को उनके कर्मों के लिए एक्सपोज करना एक इतिहासकार की नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती थी। तो किसी का मजाक उड़ाने का मतलब ये नहीं था कि टेक्स्ट फिक्शन हो गया, ये उनका इतिहास लिखने का तरीका था।
ये पॉइंट सच में बहुत मेक सेंस करता है। और अगर सिर्फ एक्शन और रोमांच के होने से कोई चीज फिक्शन बन जाती तो फिर दुनिया की आधी सच्ची घटनाएं तो नॉवेल ही कहलाएंगी। डॉक्टर कीनर ने खुद अपनी लाइफ का एक बहुत ही पर्सनल और बेहतरीन उदाहरण दिया इस पर।
हाँ, उनकी पत्नी वाला उदाहरण है ना।
हाँ,
उन्होंने अपनी पत्नी के अनुभवों पर एक किताब लिखी है। उनकी पत्नी 18 महीने तक युद्ध शरणार्थी के रूप में रही थी। अब अगर कोई उस किताब को पढ़े तो उसमें हर कदम पर एक्शन है, सर्वाइवल की जद्दोजहद है, और उन दोनों के बीच एक रोमांस का एंगल भी है
जो कि पूरी तरह से सच है। बिल्कुल सच है। पब्लिशर ने भी डिमांड की थी कि किताब को क्रिस्प और एंगेजिंग रखने के लिए सिर्फ सबसे ड्रामेटिक घटनाओं को ही हाईलाइट किया जाए, तो उन्होंने बाकी की हजारों रूटीन बातों को डायरियों में ही छोड़ दिया। अब सिर्फ दिलचस्प घटनाओं को फिल्टर करके लिखने से वो कहानी फिक्शन तो नहीं बन गई ना?
एग्जैक्टली। घटनाओं का चुनाव करना या जो सिलेक्टिविटी है वो हर इतिहासकार करता है। अगर कोई रोजमर्रा की बोरिंग बातें लिखने लगे तो कोई उस इतिहास को पढ़ेगा ही नहीं।
कोई नहीं पढ़ेगा, मैं तो पक्का नहीं पढ़ूंगी।
वही तो। और जहां तक भीड़ के हंगामे या दंगों की बात है, जिनका जिक्र एक्ट्स में बार बार आता है, अगर हम थ्यूसिडाइड्स या जोसेफस जैसे अत्यंत गंभीर इतिहासकारों को पढ़ें तो उनकी किताबों में भी ऐसे हंगामे, क्राउड वायलेंस और लड़ाइयों का बहुत डिटेल में जिक्र मिलता है। असल में उस समय जो एक्चुअल उपन्यास लिखे जाते थे उनका फोकस कुछ और ही होता था।
मैंने भी कहीं पढ़ा है कि प्राचीन नॉवेल्स ज्यादातर रोमांस पर फोकस्ड होते थे।
सही कहा आपने, प्राचीन उपन्यास मुख्य रूप से रोमांस पर आधारित होते थे। और सबसे बड़ी बात जो पर्वों की थ्योरी को खारिज करती है वो ये है कि प्राचीन दुनिया में उपन्यास कभी भी हालिया ऐतिहासिक पात्रों पर नहीं लिखे जाते थे।
अच्छा, तो फिर किन पर लिखे जाते थे?
उपन्यास उन राजाओं या नायकों के बारे में होते थे जो सदियों पहले गुजर चुके हैं, जिनके इर्द गिर्द एक मिथक बुना जा सके। पहली सदी में पॉल या यीशु, जो कि उसी समय के हालिया ऐतिहासिक पात्र थे, उनके ऊपर कोई फिक्शन या नॉवल नहीं लिखता था।
मतलब नॉवल थ्योरी तो यहाँ पूरी तरह से गिर जाती है।
बिल्कुल, ताश के पत्तों की तरह।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर रिचर्ड पवो की उपन्यास वाली थ्योरी को साइड कर दें तो फिर सवाल उठता है कि ये टेक्स्ट है क्या। कुछ स्कॉलर्स ने एक अलग ही एंगल पकड़ा है, जैसे मेरियन बॉन्ट्स नाम की एक विद्वान है, उन्होंने एक थ्योरी दी कि ये शायद कोई गद्य महाकाव्य है।
हाँ, प्रोज एपिक।
हाँ, प्रोज एपिक। उनका मानना है कि जैसे वर्जिल ने रोमन साम्राज्य के लिए एनीड लिखा था एक फाउंडेशन स्टोरी के तौर पर, वैसी ही एक्ट्स ईसाई धर्म का महाकाव्य है। लेकिन मुझे पर्सनली इस गद्य महाकाव्य वाले टर्म पर बहुत बड़ा डाउट है। मतलब क्या पुरानी दुनिया में गद्य में यानी बिना पोएट्री के महाकाव्य लिखे भी जाते थे?
इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और मैं कहूंगा कि आपका ये डाउट बिल्कुल वैलिड है, और यही इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। प्राचीन दुनिया में गद्य महाकाव्य नाम की किसी शैली का कोई वजूद ही नहीं था।
एक सेकेंड, वजूद ही नहीं था?
मतलब बिल्कुल भी नहीं।
बिल्कुल नहीं?
ये एक मॉडर्न टर्म है जिसे प्राचीन साहित्य पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की गई है।
ऐसा क्यों? मतलब महाकाव्य पोएट्री में ही क्यों होने चाहिए थे?
इसके पीछे एक पूरा विज्ञान और परंपरा है। महाकाव्य जैसे होमर का इलियड या ओडिसी, या भारतीय संदर्भ में भी रामायण या महाभारत को देखें तो वे सब कविताओं या श्लोकों में रचे जाते थे। इसका मुख्य कारण ये था कि जब ये साहित्य बना तब लोग ज्यादातर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे।
ओहो, मतलब मौखिक परंपरा थी।
बिल्कुल, कहानियां मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती थीं, और गद्य की तुलना में कविताओं को उनके रिदम और मीटर के कारण याद रखना बहुत आसान होता था।
हाँ, गाने जल्दी याद हो जाते हैं।
सही कहा। इसलिए महाकाव्य हमेशा पोएटिक फॉर्म में होते थे। वे हमेशा सुदूर अतीत के मिथकों और देवताओं की कहानियां कहते थे। दूसरी तरफ एक्ट्स पूरी तरह से गद्य में लिखा गया है, और ये किसी हजारों साल पुरानी माइथोलॉजी पर नहीं बल्कि बहुत ही रीसेंट ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। इसलिए बॉन्सेस की जो महाकाव्य वाली थ्योरी है वो उस जमाने के साहित्यिक नियमों के हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठती।
मेक सेंस। पोएट्री याद करने के लिए होती थी और प्रोज डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अच्छा, एक थ्योरी और है जिसे काफी डिस्कस किया गया है, जीवनी का सिद्धांत। कुछ विद्वान इसे पीटर और पॉल की एक समानांतर जीवनी मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मशहूर इतिहासकार प्लूटार्क अपने समय में बड़े नेताओं की जीवनियां लिखते थे। क्या ये थ्योरी थोड़ी बेहतर है?
ये नॉवल या एपिक थ्योरी से तो बेहतर है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से एनालाइज करें तो ये भी टूट जाती है। देखिए, प्लूटार्क की जो समानांतर जीवनियां थी उनका एक बहुत ही रिजिड और स्पष्ट स्ट्रक्चर होता था।
रिजिड स्ट्रक्चर?
मतलब किस तरह का?
वो एक ग्रीक व्यक्ति की जीवनी लिखता, फिर एक रोमन व्यक्ति की, और फिर दोनों के कैरेक्टर की तुलना करता। टेक्स्ट का पूरा फोकस उन दोनों व्यक्तियों पर ही रहता था।
लेकिन एक्ट्स में तो ऐसा नहीं है ना, इसमें तो कहानी बहुत सारे किरदारों के बीच शिफ्ट होती है। इससे पूरा नैरेटिव स्टीफन और फिलिप नाम के दो अलग किरदारों पर शिफ्ट हो जाता है।
हाँ, और फिर अचानक से वापस पॉल पर आ जाता है।
हाँ, फिर अध्याय 9 से 12 तक कहानी पीटर और पॉल के बीच बहुत तेजी से झूलती है और बाद में पूरी तरह पॉल पर आ जाती है। कोई भी प्राचीन बायोग्राफर अपने मुख्य किरदारों को इस तरह बीच में नहीं छोड़ता।
तो मतलब ये किसी अकेले इंसान की कहानी है ही नहीं?
बिल्कुल नहीं। ये टेक्स्ट स्पष्ट रूप से व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि एक मूवमेंट के बारे में है, एक व्यापक ऐतिहासिक आंदोलन के फैलने की कहानी है। ये किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी नहीं हो सकती।
तो अगर हम एक एक करके इन सारी थ्योरीज को क्रॉस कर दें, ये नॉवेल नहीं है, ये महाकाव्य नहीं है और ये कोई पारंपरिक जीवनी भी नहीं है, तो अंत में हम उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो आज के ज्यादातर प्रमुख स्कॉलर्स मानते हैं कि ये एक गंभीर इतिहास लेखन है।
हाँ, और इसके इतिहास होने के बहुत ठोस सबूत भी हैं। प्राचीन इतिहास में कुछ खास तरह के एलिमेंट्स होते थे, जैसे लंबे भाषण,
सेट स्पीचेस, राइट?
हाँ, सेट स्पीचेस। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बड़े बड़े नेताओं के स्पीचेस का बहुत महत्व होता था। इसके अलावा ल्यूक, जिसे एक्ट्स का लेखक माना जाता है, उसने अपनी किताब की शुरुआत में एक बहुत ही स्पष्ट ऐतिहासिक प्रस्तावना दी है।
वो ल्यूक 1:1-4 वाला हिस्सा?
बिल्कुल वही, ठीक उसी स्टाइल में जैसे उस जमाने के इतिहासकार अपने काम की प्रमाणिकता और अपने सोर्सेस को एस्टैब्लिश करने के लिए लिखते थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें बाहरी दुनिया की घटनाओं, भौगोलिक डिटेल्स और शासकों जैसे गैलियो, क्लॉडियस और पिलातुस के साथ जो टाइमलाइन का तालमेल है वो इतना सटीक है कि एक उपन्यासकार तो कभी इतनी मेहनत करेगा ही नहीं।
ये तो है, लेकिन अगर ये इतिहास है तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है और ये वो पॉइंट है जहां मुझे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा।
हाँ, पूछिए।
अगर कोई प्राचीन दुनिया में एक सीरियस इतिहास लिख रहा है तो उसमें उस जमाने के एलीट स्टाइल क्यों नहीं है? ग्रीक साहित्य में एक चीज होती थी, एक्फ्रेसिस।
हाँ, एक्फ्रेसिस।
हाँ, यानी किसी जगह या दृश्य का बहुत ही बारीक, सजावटी और अलंकृत वर्णन करना। जब हम एक्ट्स पढ़ते हैं तो उदाहरण के लिए जब पॉल और सिलास फिलिपी शहर से निकलते हैं तो लेखक ने वहां के मशहूर 100 पंखुड़ियों वाले गुलाब के फूलों का जिक्र क्यों नहीं किया? वहां की प्रसिद्ध सोने की खादानों के बारे में या उस सड़क पर मौजूद उस मशहूर प्राचीन शेर की मूर्ति का वर्णन क्यों नहीं किया?
ये एक बहुत ही शानदार सवाल है
ना? मतलब अगर ये एक महान इतिहासकार का काम है तो वो ये एलीट डिटेल्स मिस कैसे कर सकता है?
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इसका जवाब हमें प्राचीन इतिहास की अलग अलग कैटेगरीज को समझने में मदद करता है। ये बिल्कुल सच है कि एक्ट्स में उस उच्च स्तरीय सजावटी एलीट स्टाइल का अभाव है जिसे एक्फ्रेसिस कहते हैं।
तो फिर उसने ऐसा क्यों लिखा?
ऐसा इसलिए नहीं है कि लेखक को इतिहास लिखना नहीं आता था, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो एक अलग ऑडियंस के लिए लिख रहा था। एक्ट्स को हम एक लोकप्रिय स्तर का इतिहास कह सकते हैं। ये समाज के केवल टॉप प्रतिशत, सबसे पढ़े लिखे या अमीर अभिजात वर्ग के लिए नहीं लिखा गया था।
अच्छा, मतलब आम लोगों के लिए था।
हाँ, इसका फोकस सजावटी शब्दों से रीडर को इम्प्रेस करना नहीं था, बल्कि घटनाओं और उनके अर्थ को आम जनता तक पहुंचाना था। और अगर हम इसे और भी स्पेसिफिक टर्म दें तो इसे एक क्षमा प्रार्थी जनसांख्यिकी इतिहास कहा जा सकता है।
क्षमा प्रार्थी जनसांख्यिकी इतिहास, वाओ, ये टर्म तो बहुत ही भारी भरकम है। थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं इसका एक्चुअल मतलब क्या है। और ये जो शब्द है क्षमा प्रार्थी या एपोलोजेटिक, इसका मतलब तो अपना बचाव करना होता है। तो अगर लेखक का मेन मोटिव खुद को डिफेंड करना था तो क्या ये टेक्स्ट बायस नहीं हो गया? फिर ये एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री कैसे रही?
ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। पहले इस भारी भरकम टर्म को डिकोड करते हैं। उस जमाने में जो ग्रीक और रोमन लोग थे वे खुद को बहुत सुपीरियर मानते थे। रोमन साम्राज्य की नजर में जो चीज प्राचीन थी वही अच्छी और भरोसेमंद थी,
और जो नया है वो खतरनाक है।
एग्जैक्टली, कोई भी नया धर्म या नया ग्रुप उनके लिए खतरे की घंटी होता था। उन्हें लगता था कि ये लोग कोई नया विद्रोह शुरू करने वाले हैं। ऐसे में जो हाशिए पर रहने वाले ग्रुप्स थे वे अपना इतिहास लिखते थे ताकि रोमन दुनिया को अपनी अहमियत और अपनी जड़ों की प्राचीनता साबित कर सकें।
अच्छा, मतलब जोसेफस ने जो यहूदी इतिहास लिखा था वो भी इसी तरह का था?
एग्जैक्टली, जोसेफस ने यहूदी इतिहास इसीलिए नहीं लिखा कि उसे सिर्फ क्रोनोलॉजी सेट करनी थी। उसने यहूदी इतिहास इसलिए लिखा ताकि वो ग्रीक और रोमन लोगों के इस घमंड को तोड़ सके कि सिर्फ वे ही सभ्य हैं।
अरे वाह, तो उसने दिखाया कि यहूदी सभ्यता भी महान है।
हाँ, उसने दिखाया कि यहूदी सभ्यता कोई नई या असभ्य नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी और महान है। अब इसी बात को एक्ट्स पर लागू करते हैं। एक्ट्स का लेखक भी रोमन साम्राज्य के सामने एक केस पेश कर रहा है।
मतलब वो बता रहा है कि हम कोई नया पंथ नहीं है।
बिल्कुल, वो दिखा रहा है कि ये जो शुरुआती ईसाई चर्च है ये कोई रातों रात खड़ा हुआ नया अवैध या विद्रोही गुट नहीं है। इसकी जड़ें उसी प्राचीन इसराइल के धर्म में गहराई से जमी हुई हैं, जिसे रोमन कानून के तहत पहले से ही मान्यता मिली हुई थी।
तो उनका मकसद ये दिखाना था कि भाई हमसे कोई खतरा नहीं है, हम कोई बगावत नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल, और रही बात आपके बायस वाले सवाल की कि अगर ये डिफेंस है तो ये इतिहास कैसे हो सकता है, तो यहाँ हमें फिर से मॉडर्न और प्राचीन नजरिए का फर्क समझना होगा। प्राचीन दुनिया में इतिहास का मतलब आज के विकिपीडिया पेज जैसा नहीं होता था, जहाँ सिर्फ सूखे तथ्य और डेट्स लिखी हों।
तो इस सब का आखिर मतलब क्या है, इसको मैं एक एनालॉजी से समझना चाहूंगी। आज के टाइम में अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम एक एनसाइक्लोपीडिया की उम्मीद करते हैं, एकदम सटीक, थोड़ी नीरस, बिना किसी इमोशन के, जहां हर चीज बुलेट पॉइंट्स में हो।
हाँ, जो कि बहुत ड्राई होता है।
लेकिन मुझे लगता है कि प्राचीन इतिहास एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह नहीं, बल्कि एक चश्मेदीद गवाह की गवाही की तरह था। एक ऐसा गवाह जो सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कोर्ट रूम में या सड़क पर क्या हुआ, बल्कि वो पूरे जज्बे के साथ ये भी बता रहा है कि वो घटना क्यों महत्वपूर्ण थी और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। क्या मैं सही सोच रही हूँ?
ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। प्राचीन इतिहासकार घटनाओं के बुनियादी सार और सच्चाई को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे, लेकिन वे किसी इंसान द्वारा बोले गए संवादों के बिल्कुल सटीक शब्दों या घटनाओं की एकदम मिनट टू मिनट टाइमलाइन में थोड़ी छूट लेते थे।
अच्छा, मतलब फीलिंग सेम रहनी चाहिए, शब्द चाहे थोड़े बदल जाएं।
हाँ, थियोसिडाइड्स ने खुद कहा था कि जब वो भाषण लिखता था तो वो कोशिश करता था कि जो बात उस स्थिति में कही जानी चाहिए थी और जो वक्ता का मूल भाव था उसे बरकरार रखे, ना कि हर एक शब्द की हूबहू नकल करे। प्राचीन इतिहासकारों के लिए इतिहास में ईश्वरीय हस्तक्षेप के संकेत ढूंढना और समाज को नैतिक दिशा दिखाना भी इतिहासकार का ही काम था।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आना कि वे कुछ भी मनगढ़ंत बातें लिख देते थे, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर वो नॉवेल वाली बात फिर से सही साबित हो जाएगी। क्या उस समय सटीकता का कोई पैमाना था ही नहीं?
पैमाना बिल्कुल था, और बहुत कड़ा पैमाना था। प्राचीन इतिहासकार जैसे कि पॉलीबियस बहुत ही क्रिटिकल और आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते थे। ऐसा नहीं था कि वो अंधविश्वासी लोग थे जो हर उड़ती खबर को अपने टेक्स्ट में डाल दें।
तो वो लोग क्रॉस चेक करते थे?
बिल्कुल, पॉलीबियस जैसे इतिहासकार अलग अलग स्रोतों की क्रॉस चेकिंग करते थे, भौगोलिक स्थानों की खुद यात्रा करके जांच करते थे और चश्मदीद गवाहों के इंटरव्यू को सबसे बड़ा सोर्स मानते थे। अगर कोई इतिहासकार अपने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता था तो बाकी के स्कॉलर्स उसकी जमकर धज्जियां आते थे।
मतलब पीयर रिव्यू होता था उस जमाने में भी,
कह सकते हैं। लूक ने भी, जो कि एक्ट्स के लेखक माने जाते हैं, अपनी पहली किताब की प्रस्तावना में बहुत ही स्पष्ट रूप से दावा किया है कि उसने सावधानी पूर्वक उन लोगों के स्रोतों की जांच की है जो घटनाओं के शुरू से चश्मदीद थे,
जो कि किसी फिक्शन राइटर का अप्रोच नहीं हो सकता।
बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही सतर्क और मेथोडिकल इतिहासकार का अप्रोच है। उन्होंने घटनाओं को शायद थीम के हिसाब से एक साथ ग्रुप कर दिया हो ताकि पढ़ने वाले को नैरेटिव फ्लो समझ में आए, लेकिन घटना का जो सार था वो ऐतिहासिक रूप से एकदम सॉलिड था।
एक्ट्स को खोलते हैं और उसमें एक्शन, ड्रामा और भीड़ का हंगामा देखते हैं तो हमें उसे गलती से कोई थ्रिलर नॉवल या किसी पौराणिक देवता का महाकाव्य नहीं मान लेना चाहिए।
एकदम सही,
ये दरअसल एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया गया पॉपुलर प्राचीन इतिहास है, जिसका एक बहुत ही स्पेसिफिक और डिफेंसिव मिशन था, ये साबित करना कि ये नया मूवमेंट कोई रोमन साम्राज्य के खिलाफ राजनीतिक बगावत नहीं है, बल्कि एक गहरी ऐतिहासिक जड़ रखने वाली शांतिपूर्ण परंपरा है।
Exactly.
और इस पूरी बहस से जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है वो ये है कि ज्ञान की असली कीमत तब समझ आती है जब उसके संदर्भ को पूरी तरह से समझा जाए।
हाँ, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। बिल्कुल, अगर कोई आज के जर्नलिज्म या मॉडर्न हिस्ट्री के रूल्स को उठाकर उन प्राचीन ग्रंथों पर लागू करने लगे जो 2000 साल पहले लिखे गए थे, तो ये एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल गलती होगी। हमें अतीत के टेक्स्ट को उनके अपने जमाने की शर्तों और नियमों के हिसाब से पढ़ना चाहिए, तभी हम उनकी असली अहमियत और उस सच्चाई को डिकोड कर पाएंगे जो लेखक हम तक पहुंचाना चाहता था।
बिल्कुल, ये कॉन्टेक्स्ट वाली बात किसी भी फील्ड के लिए बहुत जरूरी है। और हमेशा की तरह इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो इसी कॉन्वर्जेशन से बाहर आता है, लेकिन हमें आज की दुनिया को लेकर सोचने पे मजबूर करता है।
वो क्या है?
आज हमने डिस्कस किया कि प्राचीन इतिहासकारों ने अपना इतिहास सिर्फ ड्राई फैक्ट्स बताने के लिए नहीं, बल्कि समाज को एक मॉरल डायरेक्शन देने के लिए लिखा था। उनका मकसद था ये बताना कि इतिहास में क्या सही था और क्या गलत।
बिल्कुल,
आज के इस न्यूज साइकिल और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले जमाने में हर न्यूज चैनल, हर टॉक शो और हर अखबार एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी का दावा करता है। उनका दावा होता है कि हम तो सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हैं, फैसला जनता का है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या ऐसा सच में है?
ये एक बहुत गहरा सवाल है
ना, क्या हम आज भी अनजाने में अपनी न्यूज फीड्स में, अपने डिबेट्स में और अपने आर्टिकल्स में वही मॉरल स्टोरीज और हीरो वर्सेस विलन वाले पैटर्न नहीं ढूंढ रहे हैं जो पुराने जमाने के लोग अपने इतिहास में ढूंढते थे? शायद इंसान का कहानियों के जरिए दुनिया को समझने का तरीका कभी बदला ही नहीं, बस हमने उस पुरानी स्टोरी टेलिंग को आज ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का नया और फैंसी नाम दे दिया है। अगली बार जब आप लोग कोई न्यूज रिपोर्ट पढ़ें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।